समझना एक फिक्र है। कोई भी जो कुछ समझना और ग्रेस्प करना चाहता है उसे यह फिक्र होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, जिस सडी डीएचएक पर आप चल रहे हैं वहाँ आपको धर्म दिखता है, आपको मूसा ईसा और मोहम्मद के धर्म दिखते हैं, आपको सेक्स दिखता है और बाकी मुद्दे दिखते हैं, आपको खाना पैसा दौलत रुतबा पॉलिटिक्स सब कुछ दिखता है। या शायद आप दीमक के बारे में सोच रहे हैं, या आप गैलेक्सी के बारे में सोच रहे हैं और ख़ुद को एस्ट्रोनॉमर समझते हैं, या आपको लगता है आप CIA में हैं, या पता नहीं आप खुद को दुनिया में कहीं भी रखते हैं, ये आपकी फ़िक्र है। इसलिए हो सकता है एक डेंटिस्ट को कभी कैंसर होने की फ़िक्र ना हो। इस सडी डीएचएक पर एक और दुकान है जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नाम है रीस्टार्ट। एक और दुकान है जो हज़ारों किलोमीटर लंबी है, लेकिन अब तक आप सोचते थे कि यह सिर्फ एक पार्क है। इसे कहते हैं रीस्टार्ट की फिक्र, उन चीज़ों को समझना जो आपको समझनी चाहिए। इस पर ध्यान दीजिए, रीस्टार्ट के लिए दो समस्याएं हैं। पहली, उन लोगों को समझाना और वापस मुद्दाना बहुत मुश्किल है जो किसी एक रास्ते पर यकीन कर चुके हैं और उसे मान चुके हैं। मुझे पहले उन्हें रोकना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा सर आपका रास्ता बढ़िया है लेकिन 5 मिनट रुकिए और आइए साथ में चाय पीते हैं। रीस्टार्ट उन्हें उस वक्त वो चाय पिला रहा है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ और ग्रुप्स हैं जो वाकई सोचने का तरीका समझना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कि एक नास्तिक, एक नास्तिक के साथ हमारी समस्या शायद ज़्यादा आसानी से हल हो जाए, क्योंकि यह इंसान बेशक धर्म में यकीन न रखता हो लेकिन कम से कम सोचने में यकीन रखता है। हो सकता है वो समझता ना हो पर कम से कम वो सोचता तो है। आप गैलेक्सी के बारे में सोच सकते हैं लेकिन उसे समझना अलग बात है। यह तथ्य कि आप उसके बारे में सोचते हैं यह एक अलग मुद्दा है। अब बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, सर यह इंसान एक आमिल क्या है, इससे हमारा क्या भला होगा, ये सब क्या है, इंसान एक आमिल को जानने की वजह क्या है। रीस्टार्ट प्रोग्राम के दौरान इन सवालों के जवाब एक एक करके दे जाएंगे। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा टारगेट कौन है? मेरा टारगेट सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, मेरा टारगेट दुनिया के वो 7 अरब लोग हैं जो पक्का रीस्टार्ट से गुजरेंगे, मतलब वो पक्का मरेंगे। दुनिया में कोई भी जो मरता नहीं है उसे रीस्टार्ट का ऑडियंस बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो प्लैनेट अर्थ पर नहीं आता मतलब पैदा नहीं होता, वो शायद रीस्टार्ट का ऑडियंस नहीं है। रीस्टार्ट एक रहस्यवादी प्रोग्राम है। मैं एक और छोटी सी सफाई दूंगा क्योंकि रीस्टार्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब रीस्टार्ट किसे सुनना चाहिए? जल्द ही रीस्टार्ट में हम बात करेंगे कि आपके अंदर क्या होता है जब आप किसी LDDDHK से मिलती हैं और बच्चा पैदा करना चाहती है। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बता सकता कि आपके बच्चे का प्रोफेशन क्या होगा सिवाय रीस्टार्ट के। कोई डॉक्टर आपको नहीं बता सकता कि आपका अगला बच्चा, आपने अभी उस LDDHK से शादी भी नहीं की है, लड्डडिचका होगा या लड्डडकी सिवाय रीस्टार्ट के। कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि 2 महीने की उम्र से इस बच्चे के साथ क्या होगा सिवाय रीस्टार्ट के। कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि आपने अपने 10 बॉयफ्रेंड्स में से इसी एक स्पेसिफिक बंदे से शादी क्यों की सिवाय रीस्टार्ट के। मतलब अगर आपको LDDDH की बाजी करनी है तो आपको रीस्टार्ट में आना पड़ेगा, रीस्टार्ट में LDDHKOں के साथ खेलना। अगर आपको तलाक चाहिए तो आपको रीस्टार्ट सुनना पड़ेगा। जल्द ही टॉपिक्स खुलेंगे क्योंकि इसका मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है। कोई डॉक्टर आपको नहीं बता सकता कि कब्र में पहली रात क्या होता है, आप कहाँ मरेंगे या क्या होगा सिवाय रीस्टार्ट के। कोई डॉक्टर कोई एस्ट्रोनॉमर आपको नहीं बता सकता कि मरने के बाद क्या होता है सिवाय रीस्टार्ट के। कोई धर्म आपको नहीं बता सकता कि मरने के बाद क्या होता है। उन्होंने यह वाक्य हजारों सालों से मिस्टिक्स से सुने कि हाँ तुम मरते हो और नकीर और मुनकर आते हैं, मतलब उन्होंने मिस्टिक्स का माल चोरी किया। वो आए और बिना समझे बस छिलका पेश कर दिया। इसीलिए रूमी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं हमने कुरान से मग्ज कर्नल गूदा ले लिया और छिलका हड्डियाओं गधों के लिए छोड़ दिया, मतलब गॉस्पेल इंजील से भी, और छिलका गधों के लिए छोड़ दिया, मतलब हमने छिलका हुसैनी के लिए छोड़ दिया। तो आपके पैदा होने से पहले क्या होता है ये रीस्टार्ट से जुद्धा है, और आपकी मौत के बाद क्या होता है ये रीस्टार्ट से जुद्धा है। सर क्या ये आपकी फिक्र नहीं है? इस 100 साल की ज़िंदगी के एक छोटे से मसले के लिए आप खुद को कितना मेंटल टॉर्चर देते हैं अब सोचिए 150 मिलियन साल बाद आप मरते हैं, आप अगली दुनिया में अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की कोशिश करते हैं और वो काम नहीं करता। वो पूछते हैं क्यों काम नहीं किया, आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आया, कोई नहीं सुनता। वो आपकी आंख पर मुक्का मारते हैं, आप कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या है। वो कहते हैं यही तो रीस्टार्ट प्रोग्राम कर रहा है। तो क्योंकि हुसैनी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा बल्कि रूमी, सादी और हाफिज़ के विचार पहुंचा रहा है, मैं बस मिसाल के तौर पर धर्मों की बात कर रहा हूं, नॉन रिलीजन्स की। हम सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे दिल में हर उस शख्स के लिए इज्जत है जिसका कोई धर्म है, जो भी हो ठीक है, लेकिन अगर आप खुदा, जीसस, स्वर्ग, नर्क, अच्छे लोग या सफलता की बात करते हैं तो आप सवालों के घेरे में हैं। ये चीज़ें रीस्टार्ट की हैं, मेरा मतलब ये हुसैनी के प्रोग्राम की नहीं है बल्कि उस रीस्टार्ट की हैं जो 10,000 सालों से मौजूद है, मतलब यह रूमी और बाकी लोगों की है। रूमी को इंटरप्रेट करने का हक है, आपको कुरान, तौरा या गॉस्पेल को इंटरप्रेट करने का हक नहीं है। अब आप लोगों को धार्मिक कानून समझा सकते हैं और ये बहुत बढ़िया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यहां तक कि नास्तिक एथिस्ट को भी इस रिस्टार्ट की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पिछले हफ्ते हमने साबित किया कुरान की आयतों के मुताबिक, देखिए इसमें से कुछ भी मेरी तरफ से नहीं था, हमने साबित किया कि प्लैनेट अर्थ पर ऐसे लोग हैं जो पैगंबर नहीं बने और बड़े पैगंबर। जब मैं एक या दो मिसाल देता हूं और आज मैं एक और देने वाला हूं, इसका मतलब है आप सबके दिमाग हिलने वाले हैं। खुद कुरान की आयतों के मुताबिक प्यारे मुसलमानों, उस प्रोग्राम में हमने साबित किया कि मूसा मोसेस के साथ एक आदमी था जिसे रूमी खिद्र कहते हैं। मूसा कुछ सीखने के लिए उनके पास जाते हैं, ये आदमी मूसा की 2-3 बार बेइज्जती करता है और उन्हें अपने साथ नहीं रहने देता। वो उनसे दोस्ती नहीं करता और कहता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, और मूसा विरोध नहीं करते। वो मानते हैं कि ये आदमी महान है और वो खुदा था जिसने मूसा को उनके पास भेजा। प्लीज़ ध्यान दीजिए, आप कहते हैं अगर खुदा ने चाहा तो मैं अमीर बन जाऊँगा, अगर खुदा ने चाहा तो मैं अच्छा इंसान बन जाऊँगा। सबसे पहले तो खुदा को चाहने की फुर्सत नहीं है, दूसरा कौन सा खुदा, तीसरा आपका खुदा दिखता कैसा है, चौथा खुदा कौन है, खुदा आपकी मदद बिल्कुल नहीं करता, खुदा आपकी किसी भी चीज़ में मदद नहीं करता। सबूत यह है कि खुदा ने चाहा कि मूसा खिद्र के पास जाएं कुछ समझने के लिए, और खिद्र उनसे कहते हैं अगर तुम अपने खुद के खुदा से भी मशवरा कर लो तब भी तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। ये कुरान की आयतें थीं जो मैंने आपको बताईं। ये लोग कौन हैं, सारे पैगंबरों को इनके साथ रहने पर मजबूर क्यों किया जाता है, ये बड्ढे पैगंबर क्यों? जब एक बद्धा पैगंबर इतने महान आदमी के सामने एक छोटा प्यादा है तो आप मुझसे चार पादरियों, चार मुल्लाओं या चार रब्बियों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? क्या एक इज्जतदार रब्बी, पादरी या मुल्ला खुद को मूसा के लेवल पर देखता है? अगर वो खुद को मूसा के लेवल पर देख भी ले तब भी उसे कुछ समझने के लिए खिद्र के पास जाना पड़ेगा। ये खिद्र कौन है? हम उन्हें सूफी कहते हैं, हम उन्हें रहस्यवादी कहते हैं, हम उन्हें इंसान ए कामिल कहते हैं, या कोई ऐसा जो इंसान ए कामिल से जुदा हो और उनके दर्जे साफ हो जाएंगे। आज मैं एक दो और सबूत लाना चाहता हूं ताकि इस विषय को पूरी तरह बंद कर सकूं, ताकि आप समझ सकें कि सर ऐसे लोग धर्मों में, किताबों में जिक्र किए गए हैं। अब से मेरे सोर्सेज सिर्फ उन महान मिस्टिक्स से होंगे जिन्हें आप जानते हैं, जिन पर आप एतराज़ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं हैं, मैं सादी पर एतराज़ करने वाला कोई नहीं हूँ, सादी का एक शब्द भी बकवास नहीं है, मेरा है आपका पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पक्का बकवास बातें की हैं, दुनिया के सारे साइंटिस्ट्स ने की हैं, उन्होंने कम से कम कुछ बेकार चीज़ें कही हैं, कोई ऐसी किताब लिखी है जो वो खुद नहीं समझते, आर्टिकल छापा है, भाषण दिया है। हम सादी के साथ ऐसे मजाक नहीं कर सकते, मेरे सोर्सेज मिस्टिक्स से हैं, या ताकि आप समझ सकें खुद धर्मों की पवित्र किताबों से। सूरह नमल में दो चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करके खुदा 1 अरब लोगों को हवा में उड़ा देता है, उनका मजाक बनाता है और उन्हें अपनी उंगली पर नचाता है। अगर कुरान की आयतें सही हैं प्यारे मुसलमान और आप कुरान में मानते हैं तो यह कोई उसने कहा इसने कहा नहीं है, यह किसी फलाना ढिमकाना की रिवायत नहीं है, यह मालिक की या शफी की किताबों या किसी के उसूलों से नहीं है, यह आपके अपने कुरान की आयत है, आप आसानी से जाकर इसे समझ सकते हैं। तीन आयतों के साथ वो सबको उड्ढा देता है। वो एक ऐसा पॉइंट बताता है जो रूमी का मकसद है। रूमी ने इसे जाहिर किया और हाफिज ने भी इसे जाहिर किया। सूरह नमल की आयतें 38 से 40। कहानी बहुत सिंपल है। सोलोमन सुलेमान का क्वीन ऑफ शीबा बिल्किस नाम की एक औरत के साथ कुछ लफडेदहा है। यह क्वीन ऑफ शीबा अपने इलाके में राज कर रही है और सोलोमन उसे अपने धर्म में लाना चाहते हैं। सोलोमन खुदा के पैगंबर हैं जैसा कि धर्मों में बताया गया है, और आपको उनके बारे में यह जानने की ज़रूरत है। मैं इस आदमी को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं मूसा को एक्सप्लेन करूंगा, हम समझेंगे कि वो बड्ढे पैगंबर थे या नहीं। अभी मैं सोलोमन की बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, तोराह गॉस्पेल और कुरान के मुताबिक सोलोमन कौन है? सोलोमन के लिए जिन गधों की तरह हैं, धर्मों के मुताबिक सारे जिन हर सुबह उनके हुक्म के इंतज़ार में अटेंशन में खड्डेड़े रहते हैं, डीमंस खड्डे हैं। ध्यान दीजिए, वो कहते हैं सोलोमन कालीन पर उद्धा करते थे। हवा इस आदमी के हुक्म में है। वो हवा को कहते हैं आ और जा। हवा, प्यारे सुनने वालों, हवा। धर्मों के मुताबिक ये आदमी जो चाहता है करता है, और उनकी बीवियों की गिनती और दुनिया उनके कदमों में मुझे पता भी नहीं। मुझे सच में नहीं पता कि कौन सा मुल्ला, रब्बी या पादरी इनमें से एक भी काम कर सकता है। अगर उन्होंने किया तो मैं उनके पैर चूम लूँगा। मैं उनका अंगूठा अपने मुंह में और अपना पैर अपने कान में डाल लूँगा और ख़ुद को पीटूँगा। मैं खुद को और अपने ख़ानदान को चीर फाड़ दूँगा। प्यारे सुनने वाले, अगर एक रब्बी, एक मुल्ला, एक पादरी ने इनमें से एक भी काम किया तो मैं कुत्ता हूँ अगर मैंने फिर कभी एक लफ्ज़ भी बोला। लानत है मुझ पर। खैर, मैं अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरकार वो मेरे भगवान हैं। सोलोमन, वो बेवकूफ़, हज़रत सुलेमान पर ध्यान दीजिए, वो सब कुछ करते हैं। वो पक्षियों से बात करते हैं, गधों से बात करते हैं, वो रेगिस्तान को बताते हैं क्या करना है, टिड्डियों की पैदाइश उनके हाथ में है। कुरान, तौरा और गॉस्पेल की आयतों के मुताबिक मिस्टर सोलोमन वहाँ खड़ी डीडी हैं, उनकी फ़ौज इंतज़ार कर रही है, और एक खूबसूरत औरत जिसका नाम क्वीन ऑफ शीबा है यमन से आने वाली है, ताकि मिस्टर सोलोमन उसे अपना धर्म समझा सकें। कुरान की आयतें कहती हैं, मेरी अरबी बहुत बढ़िया नहीं है पर बुरी भी नहीं है, कुछ ऐसा कि उससे पहले कि वो सरेंडर करें। अब शब्द मुस्लिमीन आयत 38 में साफ दिखता है, आप देख सकते हैं। तो ये मुस्लिमीन उन मुसलमानों से अलग है जो आप हैं। इस मुस्लिमीन का मतलब है वो जो सरेंडर करते हैं, समर्पण। इसका मतलब यह नहीं कि क्वीन ऑफ शीबा मुसलमान है, इसका मतलब है सरेंडर करना। वो कहते हैं, ए सरदारों, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो मेरे पास आत्मसमर्पण करके आएं। सोलोमन अपनी फौज से कह रहे हैं, तुम में से कौन उस औरत का तख्त यमन से यहाँ मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो आए, ताकि जब वो यहाँ पहुँचे तो मेरी ताकत देख कर हिल जाए। तो यह आदमी जानवरों से बात करता है, हवा उसकी है, पानी उसका है, ज़मीन उसकी है। दुनिया में कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं जो उसके नीचे ना हो। मोनार्की का मतलब है सोलोमन। धर्मों के मुताबिक वो यूनिवर्स के इतिहास का सबसे बड़ा बादशाह है। कौन ला सकता है यह तख्त? एक, ये दिखाता है कि वो खुद नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तख्त को इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के साथ एंगेज होना पड़ेगा। उसे यहाँ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसे मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ एंगेज होना पड़ेगा। यह साइंटिफिक होना चाहिए। वो पूछता है, कौन ला सकता है? अगली आयत यह कहती है, कुरान कहता है, मतलब खुदा मोहम्मद को बता रहा है, ए मुसलमान, जिन्हों में से एक इफ्रित ने कहा, मैं मिस्टर सोलोमन आपके लिए वो तख्त ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, और मैं इस मामले में ताकतवर और भरोसेमंद हूँ। अमीन मतलब भरोसेमंद, नाम अमीन। वो कह रहा है कि जिन्न बस वहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़ी डीडिए हैं, उनमें से कोई घंटा कुछ नहीं कर सकता, फौज कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिन्हों में से एक सोलोमन की तरफ मुद्दता है और कहता है, मिस्टर सोलोमन, मैं यह तख्त लाऊंगा और याद रखें, मैं भरोसेमंद हूं, मतलब मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो मुझे भरोसेमंद बनाता है, और मैं ये करूंगा इससे पहले कि आप अपनी सीट से उठें। ताकत देखिए, सोलोमन किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो ये कर सके। मतलब अगर जिन्न ने कहा होता कि 4 दिन लगेंगे तो वो मान लेते, क्योंकि उनका सफ़र 9 दिन का था। वो कहता है, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, मतलब इससे पहले कि आप अपनी मुबारक तशरीफ़ उस कुर्सी से उठाएं, मैं तख्त ले आऊँगा और मैं इसके काबिल हूँ। अब इस बेवकूफ़ का घमंड और हिम्मत देखिए। सोलोमन के सामने वो कहता है, मैं काबिल हूँ, मतलब आप नहीं हैं। जब वो कहता है मैं काबिल और भरोसेमंद हूँ, इसका मतलब है आप यह तख्त लाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन मैं काबिल और भरोसेमंद हूँ और मैं ला सकता हूँ। तीसरी आयत पूरी दुनिया पर पानी फेर देती है, शिट्स ऑल ओवर द एंटायर वर्ल्ड। कुरान कहता है, जिसके पास किताब का ज्ञान था, जो भीड़ में कोई भी नहीं था, उसने कहा, मिस्टर सोलोमन, मैं इसे आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी पलकें भी झपक सकें। और जब सोलोमन ने तख्त को अपने सामने मजबूती से रखा हुआ देखा, तो उन्होंने कहा, देखो, उस बंदे ने अभी जिन्न, पूरे सिस्टम, फौज, पेडढों और दुनिया को फ्लश करके टॉयलेट में बहा दिया। आयत ये नहीं दिखाती कि सोलोमन को ओके कहने का मौका मिलता है। ध्यान दीजिए, सोलोमन ने अभी बोला भी नहीं है। ये बंदा कहता है, मिस्टर सोलोमन, इससे पहले कि आप पलकें झपकाएं, और जाहिर है उन्होंने बीच में पलक तो झपकाई होगी, क्योंकि आयत कहती है वो ले आया, मतलब जैसे वो सोलोमन को बता रहा था, इससे पहले कि आप पलक झपकाएं, तख्त यहाँ होगा, 1 सेकंड बाद तख्त वहाँ था। क्यों? क्योंकि ठीक बाद में यह कहता है, इससे पहले कि आप पलक झपकाएं, मैं इसे आपके पास ले आऊँगा। और जब सोलोमन ने इसे अपने सामने रखा हुआ देखा, तो उन्होंने कहा, यहाँ तक, मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि यह आयत है। प्यारे दोस्तों, नास्तिक और सोचने वाले और 50 दूसरे ग्रुप्स, वो अब कहेंगे, अरे सर, ये तो बस एक कहानी है। हाँ, वो ज़रूरी हिस्सा नहीं है, हम कुछ और कहना चाहते हैं। तख्त आया, उन्होंने उसे देखा और उन्होंने कहा, यह मेरे रब के फजल से है, मुझे आजमाने के लिए कि मैं शुक्रगुजार हूँ या नाशुकरा। और जो शुक्रगुजार है वो अपनी ही रूह के लिए शुक्रगुजार है, और जो नाशुकरा है, मेरा रब अमीर और करीम है। ये दिखाता है कि सोलोमन इस काम से हिल गए थे। पलक झपकते ही एक आदमी जिसके पास एक ख़ास ज्ञान है, अरबी शब्द है इंदहू, मतलब उसके पास वो अपने साथ था। इस आदमी के पास किताब का ज्ञान है, उसके पास एक ऐसा ज्ञान है जिसकी परिभाषा पढ़ाई लिखाई या एस्ट्रोनॉमी से अलग है। वो कहता है, मले ने मेरे पास ज्ञान है। वो कहता है, या इससे पहले कि आप हिलकर इस बारे में सोचें भी, हाँ जी, वो आ चुका है। सोलोमन ज़मीन पर गिरने वाले हो गए और कहा, हो खुदा, मतलब उनका अपना खुदा, वो मुझे दिखाना चाहता था कि मुझे इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। वो इस हैरानी में इतने खो जाते हैं कि सोचते हैं, खुदा मुझे टेस्ट करना चाहता है कि मैं काफिर हूं या मोमिन। अब मेरा सवाल आपसे यह है, कौन सा धर्मगुरु सोलोमन बन सकता है? नंबर एक। नंबर दो, अगर आप सोलोमन बन भी जाएं, तब भी आप तख्त नहीं ला सकते। नंबर तीन, सोलोमन की फौज के बीच में एक आदमी कहता है, मैं यह कर सकता हूं, एक ऐसा काम जो सोलोमन अपने पूरे खानदान के साथ नहीं कर सकते। कौन है यह आदमी? हाफिज कहते हैं, मैं आपको सोर्स दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझें, ताकि आप देखें, मैंने आपको कुरान की आयतों से बताया, अब मैं हाफिज के पास जाता हूं, महान आदमी, मिस्टिक। कल रात जनाब आसिफ की तरफ से खुशखबरी का पैगाम आया कि हजरत सुलेमान की तरफ से खुशी का एक निशान आया है। वो कहते हैं, कल रात जनाब आसिफ से, वो इसी आदमी का नाम ले रहे हैं, आसिफ इब्न बरखिया, एक खुशखबरी आई, वो इसके साथ हजरत सुलेमान जुड़ते हैं दो वजहों से। एक, आपको समझाने के लिए कि सोलोमन और आसिफ साथ हैं, यह मामला उनसे जुद्धा है। उन्होंने उस आदमी का नाम बताया है, उसका नाम कुरान में नहीं है। हाफिज़ को कैसे पता चला? ये बहुत दिलचस्प है, हाफिज़ खुद इन नामों को लाते हैं। वो कहते हैं, कल रात जनाब आसिफ से, ऐसा लगता है वो करीब थे किसी कॉफ़ी शॉप में, स्टारबक्स में, पिछली रात। कुरान मोहम्मद को उसका नाम नहीं देता। तो राह में आसिफ नाम का छोटा सा जिक्र है, हाफिज़ को कैसे पता? यह अपने आप में एक सवाल है। वो कहते हैं, कल रात जनाब ए आसिफ से खुशखबरी आई कि हज़रत ए सुलेमान की तरफ से खुशी का निशान आया है, मतलब सोलोमन ने इस बातचीत के लिए इशारा दिया। वो ऐसा इशारा देने के लेवल पर नहीं थे, ये ऐसा है जैसे हाफिज़ कह रहे हैं, मैंने सादी से सुना कि आसिफ कल रात आए और कहा कि वो हाजी के साथ बैठे थे। हाफिज़ पूछते हैं, और हाजी कौन? वो कहता है, सोलोमन, हम बैठे थे और ये टॉपिक आया। फिर हाफिज़ कहते हैं, हमारे वजूद की मिट्टी को हमारी आंखों के पानी से गूंद दो। वो कह रहे हैं, मेरे वजूद की इस गंदी मिट्टी को लो और मेरे आंसुओं से इस जलती हुई तकलीफ़ से गूंध दो। मैं तेहरान के शहर का पानी इस्तेमाल करके कल पानी का बिल नहीं भरना चाहता। हाफिज़ कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता तुम प्लम्बिंग लगाओ, मैं नहीं चाहता तुम बाहर से मुझ में पानी डालो हाजी। वो कहते हैं, इस मिट्टी को गूंधो, मेरे और हमारे वजूद की मिट्टी को, आँख के पानी से, मतलब मेरे अपने आंसुओं से। दिल के वीराने मैखाने को फिर से बनाने का वक्त आ गया है। यह अनंत किस्सा जो उन्होंने महबूब की लटों ट्रेस के बारे में सुनाया, यहाँ वो बेसिकली पूरे 7 अरब लोगों को उंगली दिखा रहे हैं, सिर्फ अभी के 7 अरब नहीं बल्कि 20 साल पहले के 4.5 अरब, 200 साल पहले के 3 अरब सबको। यह अनंत किस्सा जो उन्होंने महबूब की लटों के बारे में सुनाया, वो हज़ारों पॉइंट्स में से सिर्फ एक है जो इस मामले में आया। वो इशारा कर रहे हैं, मिस्टर हुसैनी, ये सेंटेंस जो तुमने लोगों को बताया, ये आसिफ इब्न बरखिया और मिस्टर सोलोमन की कहानी, इस पूरे मामले में बस हज़ारों पॉइंट्स में से एक है। ये सूफिज्म के इस सिलसिले की बस एक छोटी सी चीज़ है। ये अनंत व्याख्या जो धर्म और लोग इस आदमी के बारे में देते हैं, ये बस एक छोटा सा इशारा है। हुसैनी, और भी बहुत कुछ है। हुसैनी, हाफिज़ कहते हैं, क्योंकि इन बेचारे कंतों को पता नहीं है कि कैसे उड्ड्राचना है, उन्हें कार का आविष्कार करना पड्ड्राहता है, क्योंकि उड्ड्राहने की चेतना उनके अंदर है लेकिन वो उड्ड्राहना नहीं जानते, वो कार बनाने पर मजबूर हैं, मतलब वो अपनी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से इसका आविष्कार कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी चील को कार बनाते देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि चील उड्ड्राहती है और वहाँ जाती है जहाँ उसे जाना है। इंसान ने कार और हवाई जहाज़ क्यों बनाए? क्योंकि इंसान उड्ड्राहट नहीं सकता, तो उसे दूसरे देश में अपनी मम्मी को देखने के लिए प्लेन में बैठना पड़ा रहा रास्ता है। ये दिखाता है कि वो मिस्टिसिज्म में नहीं है। मतलब अगर मिस्टिसिज्म समझ आ जाए, कोई भी जो इसे समझता है और सूफीज़म में दाखिल होता है या जाकर उस सूफ़ी का हाथ चूमता है, वो एक ऐसे लेवल पर पहुँच जाएगा जहाँ, जैसा कि आपका कुरान इशारा करता है, वो इसमें आज़म जानता है। और याद रखें, इसमें आज़म का टॉपिक एक 6 पार्ट की सीरीज़ है जो बहुत सी चीज़ों को हिला कर रख देगी। मेरे ऐबों को ढक लो, मैं भीख मांगता हूँ इस शराब से रंगे हुए लिबास को, क्योंकि वो पाक पवित्र शख्स मुलाकात के लिए आया है। तुम दागदार हो ए हाफिज़, इसलिए बादशाह से करम मांगो। वो कहते हैं, हाफिज़ तुम खुद एक भ्रष्ट गंदे दागदार इंसान हो। तुम दागदार हो हाफिज़, ये खुद से कहते हैं, तो सोचिए मैं क्या हूँ। आप सब उस्ताद हैं प्यारे सुनने वालों, लेकिन मैं अपनी और अपने रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। हाफिज़ कहते हैं, मैं दागदार हूँ। अब सोचिए बेवकूफ़ हुसैनी कहाँ खड्डे धा है। तुम दागदार हो ए हाफिज़, इसीलिए बादशाह से करम मांगो, क्योंकि वो दृढ़ता का तत्व शुद्धिकरण के लिए आया है। उसका दरबार एक समुंदर है, इस पल को पकड़ डीएच लो और एहसास करो, ए वो जिसने नुकसान उठाया है, व्यापार का वक्त आ गया है, आपको विषय समझने का वक्त आ गया है, ताकि आप इसे ग्रेस्प कर सकें। यहाँ एक और आयत है, देखिए, यह आदमी इतना इम्पॉर्टेंट था कि हाफिज़ ने उसके बारे में 550 से ज़्यादा बार बात की। मुल्लाओं ने क्या बात की? अगर आप बाथरूम में अपने बाएँ पैर से जाते हैं या दाएँ पैर से, खुदा की कसम, क्या आपको घंटा कुछ समझ आएगा? जाओ आज रात से कल सुबह तक, जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो, उस टट्टी खाने में अपना बायां पैर रखते रहो, फिर दायां, तुम्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। हाफिज़, रूमी, सादी और बाकी सबका फोकस इस एक विषय पर क्यों है? वो इस कुरान के भीतर से आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने कुरान के 50 हिस्से क्यों लिए और उन्हें प्रमोट करते रहे, बड्डा बनाते रहे? ये इसीलिए ताकि आप समाधान समझ सकें। سولومن ان پر سلام ہو سبا سے بلکس کوئین آف شیبا کے تخت کو منگوانے میں، مولانا جلال الدین رومی، بک فور۔ ایک عفرت نے کہا، اپنی کلا سے میں اس کا تخت لانے کے لیے تیار ہوں اس سے پہلے کہ آپ اس سبھا سے چلے جائیں، وہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں۔ مجلس شدن کا مطلب ہے بیٹھنا اور کھڈے ہونا، بیٹھے رہنا۔ مجلس خود بیٹھنے کی جگہ ہے۔ وہ کہتا ہے ایک عفرت تخت لانا چاہتا تھا اور سولومن سے کہا جب تک آپ کھڈے ہوں گے بیٹھیں گے میں لے آؤں گا۔ تب آصف نے کہا اس میں اعظم کی قسم میں اسے آپ کے سامنے ایک سانس میں لانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں آصف نام کا ایک آدمی تھا، دیکھو رومی پھر سے نام لیتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان 60 ہستیوں کو دیکھیے، جنید آف بغداد سے صغیر اصفہانی، خواجو کرمانی، حافظ سعدی، رومی، فیض کاشانی، خواجہ نصیر الدین توسی تک۔ جیسے ہی آپ مسٹکس کو دیکھتے ہیں سب نے آصف کہا، قرآن نے آصف نہیں کہا۔ یہ نام کہاں سے آیا، انہیں کیسے پتا چلا، وہ سب وہی نام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ابھی میں رومی سے پی آر ایچ رہا ہوں، پچھلا والا حافظ سے تھا۔ وہ کہتے ہیں وہاں ایک آصف نے کہا عزم اعظم کے ساتھ میں اسے آپ کے پاس ایک سانس میں لانے کے لیے تیار ہوں، ایک پل میں میں لے آؤں گا۔ میں نے بس اس کا ذکر کیا تاکہ ہم جان سکیں۔ بک فور، دا بک آف سولیوشنز، سیکشن 37۔ یہ لوگ کون ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ پردے کے پیچھے کیا ہے جو اپنے دھرم کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ آدمی مسٹر سولومن کی فوج میں ایک سپاہی ہے اور مسٹر سولومن دھارمک قانون، وچاروں اور ہوا کے بھگوان ہیں، اور کوئی دھرم گرو، پادری، ربی، کوئی بدھسٹ، ہندو، کوئی نہیں، کوئی ناستک نہیں۔ مجھے ابھی ایک ناستک دکھاؤ جو وہ چیزیں کر سکے جو سولومن نے کی، وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دوسرا آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہ کہانیاں روپک ایلیگوریکل ہیں تاکہ آپ ایک خاص پوائنٹ سمجھ سکیں؟ یہ پوری طرح صاف ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں بالام سن آف بیور، بالام بن بیور ویسا ہی تھا، دیکھ لیجئے۔ موسیٰ کے ورودھ میں ایک ایسا تھا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، ایک آدمی جس کی آخری کہانی امپورٹنٹ نہیں ہے، جو یہودی کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں، کہانی کا انت بدل جاتا ہے۔ جیسس کی کہانی مہان مسیح مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے سیم ہے، خیر یہودیوں کے لیے نہیں لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے، لیکن اینڈنگ الگ ہے۔ ہمیں اینڈنگ کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اصل کہانی میں بالام سن آف بیور، موسیٰ کے وقت میں اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ سرکار بالام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے موسیٰ کو بددعا دو۔ بالام کرنے سے ڈرتا ہے، وہ اس کی جان کی دھمکی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہیں مار دیں گے۔ اور سب جانتے تھے کہ بالام کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، مطلب ایک اندھا آدمی آتا، ٹھیک ہو جاتا اور چلا جاتا۔ یہ بالام کا روز صبح کا کام تھا۔ یہ حصہ امپورٹنٹ ہے۔ بالام موسیٰ کو بددعا دیتا ہے اور موسیٰ بالام کی بددعا سے پیڈت، افلکٹڈ ہو جاتے ہیں، مطلب خدا بیچ میں نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی اس پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں خدا بھی دخل نہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بالام یہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے اونچے درجے سے گر جاتا ہے۔ موسیٰ کے وقت میں دیکھیے فراؤ، فرعون جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ بالام موسیٰ کے وقت سے تھا، دیکھیے وہ کیا کر رہا تھا۔ اس کی دعائیں قبول ہو رہی تھیں اور مسٹر موسیٰ صبح سے رات تک ڈریگنز پیدا کرنے میں بزی تھے۔ انہوں نے پانی بنایا، سمندر کو چیرا، سب کچھ کیا۔ یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سب کس کی چھوٹی انگلی بن جاتے ہیں؟ موسیٰ کی۔ اور موسیٰ کس کے ششیہ ہیں؟ خضر کے۔ موسیٰ خضر کے پاس جاتے ہیں اور پھر بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ دیکھیے میں نے کتنی مثالیں دی ہیں تاکہ آپ جانیں کہ صوفی کون ہیں، مطلب قرآن، توراہ، گوسپل میں صوفی کون ہیں، تاکہ آپ کم سے کم ان لوگوں کی قیمت، طاقت، قابلیت اور نظریے کو جان سکیں، تاکہ آپ جانیں کہ سر سولومن تخت نہیں لا سکتے۔ تو موسیٰ کے ساتھ کوئی تھا جس کے ساتھ موسیٰ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ طاقتور لوگ تھے، ان کے پاس کچھ تھا، وہ کون ہیں؟ وہ آپ کو ایک ہستی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے انسان کامل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مسٹر رومی صبح سے رات تک روتے ہیں اور شمس کے لیے پورا ایک دیوان پیدا کر دیتے ہیں۔ اور شمس انسان کامل بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ رومی کسی ایسے شخص کے لیے پورا دیوان لکھ دیتے ہیں جو ایک انسان کامل کی سیوا میں ہے۔ हुसैनी, यहाँ आपको यह बताने आया है सर, इन हजारों सालों के बाद इन किताबों के साथ जो आपने पढ़ी हैं, ये सारे महान लोग क्यों रो रहे हैं, वो आंसू क्यों बहा रहे हैं, वो किसे ढूंढ रहे हैं, वो किसके पीछे हैं, वो सब इस विचार को बढ़ावा देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि सच्चा धर्म वही है जिसने मोहम्मद को इस तरह एक्ट करने पर मजबूर किया कि गैब्रियल जिब्राइल आए, यह सच्चा धर्म है, वो इस बटन को क्यों दबाते रहते हैं। वजह बहुत लॉजिकल है, वजह है इंसानी रूह। यहाँ रूमी कहते हैं खामोश रहो ताकि तुम उनसे सुन सको जो सांस से बोलते हैं, वो जो भाषा या अभिव्यक्ति में नहीं आया, खामोश रहो ताकि रूह तुम्हारे लिए सांस ले सके, जाने पहचाने को छोड़ो और नूह की कश्ती में सवार हो जाओ। संक्षेप में, एक इंसान दो हिस्सों में बंटता है, इंसान का बाहर और इंसान का अंदर। बाहर में आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी चाची, आपके चाचा, आपकी मर्सिडीज़ और BMW, आपकी कार, कौवा, गधा, डायनासोर और पता नहीं वो सब कुछ जो कभी था, गैलेक्सीज़, M31, मिल्की वे, एंड्रोमेडा और बिग बैंग के बाद बाकी सब कुछ शामिल है। जब आप मरते हैं, गैलेक्सी आपके साथ मरती है, आपने बस इस पर ध्यान नहीं दिया है। देखिए, जब आप मरते हैं, गैलेक्सीज़, इन गैलेक्सीज़ की तस्वीरें आपके साथ मरती हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अब आपका इस गैलेक्सी से कोई कनेक्शन नहीं है, आप मर गए, वो तस्वीरें और वो पैसा, वो मर गए, आपका अब इस वजूद से कोई लेना देना नहीं है। सूफिज्म आपको सिखा रहा है कि जो आपके साथ कब्र में जाता है वो आपका सच्चा धर्म है, और जो आपके साथ कब्र में नहीं जाता वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो क्षणिक है, वो एक फ्लैश है। देखिए, मैं इसे कितनी सादगी से रख रहा हूँ। आप अभी बैठ सकते हैं और कागज़ पर लिख सकते हैं आपके साथ कब्र में क्या जाता है, क्या आपकी मम्मी, आपकी कार, आपका बेटा, आपका पैसा, नहीं, क्या जीसस आपके साथ कब्र में जाते हैं, तो जीसस आपका धर्म नहीं है। क्या मोहम्मद कब्र में जाते हैं उस हालत में, अपनी पीठ के बल, चेहरा किबला की तरफ, एक तरफ झुके हुए, क्या आप नमन कर सकते हैं, क्या आप सजदा कर सकते हैं? आपके शरीर को टिड्डियां खा जाएंगी, गधे आएंगे और इसे खा जाएंगे, कोई भी आकर आपके शरीर को खा सकता है, इसके सेल्स मिट्टी में वापस चले जाएंगे। हमारा एक सेल शायद फिरौन का रहा हो, दूसरा इटली के किसी बंदे का, हमारा एक टुकड़ा शायद पिकासो हो। तो मिस्टिसिज्म क्या समझा रहा है? मिस्टिसिज्म आपको समझाना चाहता है कि बिग बैंग से पहले क्या था। सूफिज्म समझा रहा है कि बिग बैंग से पहले क्या आया, ये पैदाइश के पल को समझा रहा है, ये आपकी रूह को समझा रहा है, ये समझा रहा है कि आपकी मौत के बाद क्या होता है। तो कोई भी दुनिया में कहीं भी जो इन चार या पांच चीज़ों के बारे में बात करता है वो सवालों के घेरे में है, और सिर्फ एक सूफी, एक मिस्टिक इन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है। तो वापसी के बारे में या जाने के बारे में या मरने के बारे में, आपकी मौत से पहले और आपकी पैदाइश के बाद, सारे डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स, वो सब आपके लिए कीमती हैं और मेरे लिए भी, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। वो आपको यह पता लगाने में मदद करते हैं कि कैसे सोना है, किसे किस करना है, रात को कहाँ सोना है, क्या किस करना है। आपको घंटा कुछ समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि असली समझ तब आती है जब आप सो जाते हैं, जब आप सपना देख रहे होते हैं। 8 घंटे के लिए आप समझते हैं कि आप सो रहे हैं, जब आप जागते हैं आप फिर से इन जीवों के रहमो करम पर हैं। आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, आपको उस मंत्री से मिलने जाना है, आपको अपना पैसा कमाने के लिए उस बंदे की चाटनी पडीडीडी हस्ती है। तो ये सारे साइंटिस्ट्स और बडीडी हस्तियाँ बिग बैंग के बाद मौजूद हैं, जब यूनिवर्स में वक्त बनाया गया था, वो गैलेक्सीज़ जो आप देखते हैं, वो दीमक जो आप समझते हैं, ये सब आपकी पैदाइश और आपकी मौत के बीच के इंटरवल में है, और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अब आपका धर्म जो भी हो, मैं उसका हाथ भी चूमूंगा, लेकिन आपकी मौत से पहले, आपकी मौत के बाद और आपकी पैदाइश से पहले, वो महान बिग बैंग, आपकी माँ के अंदर माइटोसिस और मियोसिस का पल, और आप इस छेद से, इस कब्र से, इस गर्भ से क्यों पैदा हुए, और मौत के बाद किस गर्भ में कंसीव किए जाएंगे, और मौत के बाद आपके असली माँ बाप कौन होंगे, क्या मौत के बाद हमारे माँ बाप इंसान कामिल हैं, मतलब क्या वो इंसान कामिल जिस पर आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, मौत के बाद आपका असली बाप है, क्या वो आपका आत्मिक बाप है, हमें नहीं पता। हाफिज़ और रूमी इन सब का जवाब देते हैं, और मैं आने वाले प्रोग्राम्स में उनके जवाब दूंगा। मैं बस इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता था ताकि अगले हफ्ते हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकें, शायद अगले हफ्ते नहीं पर उसके बाद वाले हफ्ते। पैदाइश के बारे में लेडीज़ को सुनना चाहिए कि वो बच्चा कैसे पैदा कर सकती हैं, उन्हें कैसा बच्चा पैदा करना चाहिए, क्या वो एक बेवकूफ़ पैदा करना चाहती हैं या एक अच्छा मर्द या औरत, प्रोडक्शन कैसे होती है और इस पर मिस्टिकल नज़रिया क्या है। अब अगर हमारे पास वक्त हुआ, खैर हो सकता है कि हम शायद साथ ही टीवी स्टेशन के लिए कुछ अच्छी खबर, लगता है हमारे पास 1000 साथी और सपोर्टर्स होने वाले हैं, मुझे 1000 सीमुर्ग चाहिए। चलो अतार के सीमुर्ग बन जाते हैं, चलो एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। 1000 लोग आते हैं और कहते हैं, सर हम आपके साथ हैं, हुसैनी फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम यहाँ हैं। अगले हफ्ते तक चलो अतार के सीमुर्ग बन जाते हैं, चलो एक दूसरे के साथी बन जाते हैं।